संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। बारह भावनाओं के चिंतन प्रक्रिया की चर्चा चल रही है, जिसमें लोक भावना में किस प्रकार का चिंतन किया जाता है उसकी चर्चा आरंभ हुई। तो लोक भावना में दो तरह से चिंतन किया जाता है कि एक तो ये उसका भौगोलिक चिंतन कि लोक का स्वरूप क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, कि जिसमें ये कहा गया है कि उसकी चिंतन प्रक्रिया में दो तरह की बातें आती हैं। एक तो हम लोक का भौगोलिक चिंतन करें और एक उसका दार्शनिक चिंतन करें। भौगोलिक चिंतन में उसकी कहाँ क्या स्थिति है ये बताया जाए, और दार्शनिक चिंतन में इस लोक की कर्तृत्व व्यवस्था का क्या स्वरूप है इस बात पर विचार किया जाता है। लेकिन दोनों का अंत में निष्कर्ष निकलना चाहिए कि इस लोक में हमारी क्या स्थिति है। स्वयं को लोकेट करना ये सबसे अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम दार्शनिक प्रक्रिया के चिंतन का क्या लाभ है, उसमें क्या एंगल खास आता है, ये बात पर थोड़ा विचार अपन करते हैं। क्योंकि इस जीव को पर पदार्थ जो संयोग के रूप में है उसको ऐसा भ्रम हो गया है कि जैसा इसका कुछ काम करने की जिम्मेवारी मेरी है, इसलिए मुझका बनाना इसका और बिगड़ना जाए इसकी चिंता रखना भी मेरा काम है, और जब जरूरत पड़े आवश्यकता के अनुसार इसको मिटा देने की जरूरत हो तो मिटा भी दिया जाए, और ये अपने माथे पर ऐसी जिम्मेवारी महसूस करता है। कुछ जो ईश्वरवादी दर्शन हैं वो तो ऐसा मान लेते हैं कि बनाने वाला ब्रह्मा है, इसकी रक्षा करने वाला विष्णु है और नाश करने वाला महेश है। लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि भले ही इस दुनिया का करने वाला कोई हो लेकिन थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी मेरी भी है, मैं सारी दुनिया का करता नहीं हूँ तो कम से कम अपने मकान का, अपने बाल बच्चों का, स्त्री पुत्रादि का, अपने मंदिर मस्जिद का, इनका कर्ता तो मैं हूँ ही, इनकी रक्षा करना तो मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका विनाश भी कर सकता हूँ। तो ऐसा जो इसके माथे पर बोझा है ये चिंतन करके कि ये लोक का ऐसा स्वरूप है कि ये स्वयं निर्मित है, ये किसी के बनाए बनता है ऐसा नहीं है, और इसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है वो भी ऑटोमेटिक व्यवस्था के अंतर्गत बाय नेचर कंडक्ट होता है। उस परिवर्तन को करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए भी किसी की आवश्यकता नहीं है और विनाश करने की ताकत भी किसी की नहीं है। इसके स्वभाव में ही वो पर्याय का पलटने रूप विनाश भी इसके स्वभाव में ही है। तो ये सब बाय नेचर कंडक्ट होता है। यानी लोक की दो तरह की व्यवस्था हो सकती है, एक व्यवस्था तो वो जो किसी व्यवस्थापक के द्वारा की गई हो, और एक व्यवस्था वो जो ऑटोमेटिक हो। आज का युग ऑटोमेटिक व्यवस्था का युग है, और सारी दुनिया का विश्वास किसी के द्वारा की गई व्यवस्था से ज्यादा ऑटोमेटिक व्यवस्था पर ज्यादा बढ़ गया है। जब हम समझते हैं कि हमें रिजर्वेशन कराना है रेल में या प्लेन में, और यदि किसी के हाथ में हो और वो कहे कि हमारी सीटें खाली नहीं हैं, बुक हो गई हैं, तो हमें भरोसा नहीं होता है कि झूठ बोल रहा है कि सही। लेकिन यदि कंप्यूटर में आ जाए कि बिल्कुल फुल है सीट, तो हमें भरोसा हो जाता है। यानी इस चेतन व्यक्ति से उस अचेतन कंप्यूटर पर हमारा विश्वास ज्यादा हो गया है, और उसका कारण भी है। कारण ये है कि हम देखते हैं ना कि उस आदमी ने हमसे कह दिया कि सीट बिल्कुल खाली नहीं है, और कोई दूसरा आदमी आया और उसने 100 का नोट बताया तो उसे एक मिनट में टिकट मिल जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि व्यवस्थापकों के द्वारा की गई व्यवस्था में वो ईमानदारी देखने में नहीं मिलती है जैसी ईमानदारी, निष्पक्षता ऑटोमेटिक व्यवस्था में मिलती है। मैं तो एक उदाहरण दिया करता हूं कि रेलवे स्टेशन पर एक मशीन रखी रहती है जो किसी डोनेटर ने उसको दी हुई है, और उसमें पर हम खड़े हो जाएं और उसमें एक रुपए का सिक्का डालें तो उसमें हमारा वजन आ जाता है और साथ में भाग्य भी लिखा रहता है। लेकिन उस मशीन पर जितने आदमी खड़े होंगे उतने सिक्के उसके पेट में अवश्य होंगे। जिसने वो मशीन डोनेट की है वो व्यक्ति भी यदि अपना वजन लेना चाहेगा तो उसे एक रुपए का सिक्का उसमें डालना पड़ेगा, उसके बिना उसका वजन उसे ज्ञात नहीं होगा। लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर दें और कहें कि एक आदमी से तुम जो आदमी तुले उससे एक रुपया ले लेना, तो क्या आपको भरोसा है कि जितने आदमी उस पर तुलेंगे उतने सिक्के उस मशीन के पेट में होंगे? वो स्वयं तुलेगा और उसमें पैसा नहीं डालेगा, अपने यार दोस्तों को तोलेगा और उसमें पैसा नहीं डालेगा। ये बात जाने दो, जितने लोगों से वो पैसा ले तोलने के, वे सारे पैसे मशीन के पेट में प्राप्त हो जाएंगे क्या? उनमें से भी वो कुछ गायब नहीं कर देगा, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन ऑटोमेटिक व्यवस्था में ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, जितने आदमी उस पर तुलेंगे उतने पैसे उसके पेट में अवश्य होंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि किसी के द्वारा की गई व्यवस्था की अपेक्षा ऑटोमेटिक व्यवस्था ही ज्यादा विश्वसनीय है। और इसी बात को वहां कहा गया है कि जगत को किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, किन हु न करा, किसी ने बनाया नहीं है, ये तो अनादि से ऐसा ही है, और इसकी रक्षा करने के लिए भी किसी की जरूरत नहीं है, ये अपनी प्रकृति से स्वयं ही सुरक्षित है, और इसका विनाश करने वाले भी किसी की जरूरत नहीं है। जो परिवर्तन रूप विनाश की आवश्यकता है वो प्रत्येक वस्तु में स्वभाव से ही वो बात पड़ी हुई है। गेहूं का पौधा पैदा होता है और उसकी उम्र 100 दिन की होती है, तो अपने क्रम से बढ़ता है और 100 दिन में सूख जाता है, मर जाता है। उसको खत्म करने के लिए, उसका नाश करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। कोई आदमी को मारने के लिए किसी दूसरे को मारने वाले की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपनी आयु पूरी करके स्वयं भी मर जाता है क्या नहीं मर जाता है। तो ये सारा जगत को किसी कर्ता की जरूरत नहीं है, किसी संरक्षक की जरूरत नहीं है और किसी विनाशक की जरूरत नहीं है। कोई इसका नाश करने वाला नहीं है, कोई इसकी रक्षा करने वाला नहीं है और कोई इसका बनाने वाला नहीं है, और तेरे माथे पर भी कोई बोझा नहीं है। यदि ये तत्व ज्ञान का चिंतन उसकी धारा में आए तो उसकी दृष्टि इस जगत की व्यवस्था की आकुलता से हटकर अपने आत्मा पर आएगी। इसलिए ये चिंतन वैराग्य का पोषक है और दृष्टि को जगत से हटाकर आत्मा की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए ये तात्विक चिंतन है कि वस्तु की व्यवस्था हमारे ख्याल में आ जाए और वो एक ख्याल में आ जाए कि इसमें जो भी हो रहा है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, कि जो मैं हाथ खींच लूंगा तो कहीं रुकावट आ जाएगी, तो इसके माथे का बोझा हट सकता है। दूसरे कि मेरा भी कोई कर्ता धरता नहीं है, तो फिर किसी की शरण में जाने की, किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस लोक भावना में जो दार्शनिक चिंतन किया जाता है लोक व्यवस्था का, छह द्रव्य की प्रणमन व्यवस्था का, एक लोक छह द्रव्यों का बना हुआ है और प्रत्येक द्रव्य में नित्य कायम रहकर प्रति समय बदलने की ताकत है, और प्रति समय बदल करके भी ये नित्य कायम रहने की ताकत है। ऐसा जो तत्व का चिंतन हो तो इस तरफ लगा हुआ जो हमारी आकुलता व्याकुलता वहां से हट जाती है, तो ये जो चिंतन है ये भी पर से दृष्टि हटाकर आत्मा की तरफ ले जाने वाला चिंतन है। और जहां तक भूगोलिक चिंतन की बात है उसमें भी एक बात है कि भाई इस तीन लोक की जो रचना है उसमें तेरी क्या पोजीशन है, तू कहां खड़ा है, तू कहां रहता है, तो कहते तीन लोक की जो रचना है, इस तीन लोक में तू अनादि काल से एक जगह नहीं रहा है, घूम ही रहा है, चक्कर ही काट रहा है, चार गति और 84 लाख योनियों के चक्कर ही काट रहा है। ये बताना चाहते हैं। यदि ये बताना नहीं चाहते होते तो तीन लोक की ही बात क्यों करते? अलोकाकाश भी तो है, लेकिन उसकी बात नहीं करते हैं जानबूझकर। इसलिए नहीं करते हैं कि अलोकाकाश में ये जीव कभी जाता नहीं। ये जीव जहां जहां घूमा है, जहां जहां ये जा सकता है कि गया है कि जाएगा, यदि आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो उसका स्थिति बताने के लिए इसका भौगोलिक चित्रण है। नरक है, सुरग है, चारों गतियां हैं, त्रेंच है, मनुष्य योनि है, सिद्ध सला है, निगोद है। तो इन सारी चीजों को लोकेट करके कि आत्मा का ज्ञान नहीं हो, हमारी दृष्टि सब जगह पदार्थों से हटकर आत्मा पर नहीं आए, तो तुम समझ लो तुम्हें कहां कहां भटकना पड़ेगा, कितने प्रकार के दुख उठाने पड़ेंगे, ख्याल में आए ना? तो ऐसा ज्ञान करें। और तुम्हें यदि आत्मा का ज्ञान हो गया तो जो सिद्ध सलाह में जाकर के तुम अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे, रही है अनंता अनंत काल यथा तथा सिद्ध पर नहीं। तो ये ज्ञान कराने की दृष्टि से भौगोलिक और दार्शनिक दोनों प्रकार का चिंतन लोक के संबंध में किया जाता है। एक बात ये भी समझना, तीसरी बात और भी है लोक भावना में, और वो तीसरी बात क्या है कि जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। कि ये जो लोक है जिसकी भूगोल की हमने बात की, ये लोक तो परलोक है, लेकिन मेरा लोक क्या है? तो कहते वो आत्मा जिसमें ये तीन लोक झलकते हैं, जिसके ज्ञान में ये तीन लोक अलोकाकाश सहित जानने में आते हैं, ऐसा भगवान आत्मा ही मेरा लोक है। चिल लोक, चैतन्य लोक, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। कि मेरा आत्मा ही लोक है, मेरे लिए तो मेरा आत्मा ही लोक है। अपने कहते हैं ना कि भाई गंगा जी का पानी बहुत पवित्र क्यों नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए क्या? गंगा जी का पानी तो मेरे को रोजाना पीने को मिल नहीं सकता है। मेरे लिए तो मेरे गांव, मेरे पड़ोस में मकान के घर के बगल में जो कुआं है, मेरी गंगा जी तो वही है, क्योंकि रोजाना मेरी प्यास तो वो बगल का कुआं ही बुझाएगा। वो जगत की गंगा से मुझे क्या लेना देना है, इस जगत के लोक से मुझे क्या लेना देना है? मेरा लोक तो चैतन्य लोक है। तो कहते हैं उसको लोक नाम क्यों देते हैं? तो लुक धातु है जो जानने के अर्थ में आती है। तो कहते हैं कि तीन लोक तीन काल को जानने वाला मेरा जो आत्मा है, इसलिए उसका नाम है लोक। क्या? जिसमें तीन लोक जानने में आए लेकिन करने की जरूरत नहीं पड़े, उनका ना मैं करता हूं, उनका मैं ना धरता हूं, उनका ना मैं हरता हूं। करता धरता हरता, करता माने बनाने वाला निर्माता, धरता माने उन्हें धारण करने वाला माने रक्षा करने वाला, और हरता माने उनका विनाश करने वाला। इस लोक का मैं करता धरता और हरता नहीं हूं, लेकिन ज्ञाता दृष्टा अवश्य हूं। क्या संबंध है मेरा इस लोक के साथ? कोई संबंध नहीं है, करने धरने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन सिर्फ एक संबंध है कि मेरे ज्ञान में ये जानने में आते हैं, ये जानने में आते हैं, और मेरा ज्ञान इन्हें जानता है, अथवा मैं इन्हें जानता हूं। मेरा इनके साथ गे ज्ञायक संबंध है, और वो गे ज्ञायक संबंध में भी रंच मात्र भी पराधीनता की गंध नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें जानने के लिए मुझे इनके पास जाना नहीं पड़ता। और मेरे ज्ञान में ये जानने में आए, इसके लिए इन्हें भी मेरे पास आना नहीं पड़ता। जे अपनी जगह शांति से रहते हैं, मैं अपनी जगह शांति से रहता हूं और ये पदार्थ मेरे जानने में आ जाते हैं और मेरा ज्ञान इन्हें जान लेता है। इन पदार्थों को मेरे ज्ञान में आने के कारण इनको कोई डिस्टरबेंस नहीं होता और मेरे ज्ञान में आने के कारण मुझे भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। कपिल कहते भाई देखो मैं क्या करूं, आत्मा का ध्यान करने बैठा था लेकिन इतनी आवाज आ रही है यहां से, अब मैं क्या करूं, मेरा मन लगता ही नहीं है इनको सुनूं कि मैं अपने आत्मा का ध्यान करूं। तो कहते भाई तेरा स्वभाव तो ऐसा है कि सारा लोका लोग तेरे ज्ञान में आ जाए तो भी उसे कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। जो तू डिस्टर्ब हो रहा है ये तो तेरा राग के कारण तू डिस्टर्ब हो रहा है। तेरे ज्ञान स्वभाव में तो ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है कि सारा लोका लोग उसके जानने में आवे और उसे रंजमात भी डिस्टर्बेंस नहीं हो। अपना जो छेउपम ज्ञान है ना, छेउपम ज्ञान समझते हो ना, जो हमें वो तुम्हें है अभी, इस ज्ञान में तो ये विशेषता है, ऐसा हमें लगता है कि हम जिसे चाहें जाने और जिसे नहीं चाहें उसे नहीं जाने। हम संस्कृत पढ़ें, अंग्रेजी नहीं पढ़े, हमें कोई बाध्य कर सकता है कि हम अंग्रेजी पढ़ें? जिसको हम जानना चाहें उसे जाने, जिसको नहीं जानना चाहें नहीं जाने, आपको देखना चाहें तो देखें और नहीं देखना चाहें तो नहीं देखें, ऐसा हमें लगता है। लेकिन केवल ज्ञान जो हमारा सर्वज्ञ भगवान है, जो हमारा असली ज्ञान स्वभाव है, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है अजित भाई कैसा, कि हम जिसको जानना चाहे जाने और जिसको नहीं जानना चाहे नहीं जाने, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमें इसमें अधिकार लगता है। हमारा स्वभाव तो क्या है कि सारा लोका लोक हमारे जानने में आवे और हम उसे जाने। हम सर्वज्ञत्व स्वभाव वाले हैं, कुछ को जाने और कुछ को नहीं जाने, और जिसे जानना चाहे उसे जाने और जिसे नहीं जानना चाहे उसे नहीं जाने, ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये तो हमारा विभाव है। क्योंकि इस विभाव में चाह लगी हुई है कि हम जिसे जानना चाहें उसे जाने। जिसमें चाह लगी हो वो स्वभाव कैसे हो सकता है? तो शांति हमारा स्वभाव कैसा है? सारा लोका लोक हमारे ज्ञान में झलके, ये हमारा स्वभाव है। और पर पदार्थ हमारे जानने में आए और उससे हमारा माथा डिस्टर्ब होने लग जाए, क्यों, तो वो हमारा स्वभाव रहेगा? जरा विचार करो आप कि आप रास्ते में जा रहे हैं और एक अर्ध नग्न चित्र महिला का सामने लगा हुआ है और उसे देखकर आप डिस्टर्ब हो जाएं, तो ये आपका स्वभाव है क्यों? जब हमारे केवल ज्ञान हो जाएगा तो वो चित्र तो अर्ध नग्न है क्यों? लेकिन सारे जगत के जितने जीव हैं, जिन जिन पर्यायों में हैं, वो पूरे नग्न हमारे ज्ञान में झलकेंगे कि नहीं झलकेंगे, बोलो? वो पूरी तरह दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? तो हम उस वक्त कितने डिस्टर्ब हो जाएंगे है? कि तेरा ज्ञान स्वभाव ऐसा है कि सारा लोका लोक उसमें झलके और उसमें रंच मात्र भी डिस्टर्बेंस नहीं हो। इसका नाम है लोक भावना, कि जिसमें झलकता लोक सब, जिसमें झलकते लोक सब, वह है आत्मा ही लोक है, वह आत्मा ही ज्ञान है। क्या ये चिंतमन कि लोका लोक जिसमें झलके ऐसा मेरा लोक तो चिल्लोक है, ये तो मेरी संपत्ति है। क्या संपत्ति है मेरी? कि जो इतना निर्मल स्वभाव वाला है कि सारा लोक झलके और मेरे ज्ञान में सारा लोक झलके, ये मेरी संपत्ति नहीं है, ये उस लोक की संपत्ति है। और उसके झलकने से न मुझे कोई डिस्टरबेंस हो और न मेरे जानने से उसे कोई डिस्टरबेंस हो। यदि डिस्टरबेंस हो तो वो वस्तु का स्वभाव नहीं है। ये चिंतमन भी लोक भावना का आंतरिक चिंतमन है और असली चिंतमन है। क्या हम कहां खड़े हैं इस लोक भावना में? जब तक ये निर्णय नहीं हो, चाहे वो भौगोलिक चिंतमन हो, चाहे वो दार्शनिक चिंतमन हो, और चाहे वो आध्यात्मिक चिंतमन हो। चौदह राज उतंग नव ये भूगोलिक चिंतमन है, किन्हू न करो न धरे को ये दार्शनिक चिंतमन है, और जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है ये आध्यात्मिक चिंतमन है। लोक भावना संबंधी अन्ना जी, बहुत से लोग इस लोक भावना को संसार भावना को एक सा ही समझते हैं, क्योंकि लोक में संसार भी उसी को कहते हैं, लोक भी उसी को कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में वर्ल्ड कहते हैं ना, दुनिया, तो संसार माने दुनिया ऐसा हम समझते हैं और लोक माने भी दुनिया। लेकिन ये बारह भावनाओं के चिंतमन में इन दोनों का बिल्कुल अलग अलग अर्थ है। जो संसार भावना में ये दुनिया वर्ल्ड लोक ये अर्थ नहीं है उसका, उसका अर्थ तो संचरण में घूमना, बस सिर्फ घूमना और मोह राग देश के परिणाम होना, बस उसका नाम संसरण है, उसका नाम संसार है। वो संसार का तो जितना जल्दी नाश हो उतना अच्छा, क्योंकि वो तो आत्मा का विकार है संसार भावना में, और ये लोक के नाश की बात नहीं है, ये तीन लोक की बात है, ये वस्तु के स्वरूप की बात है, ये आत्मा के स्वभाव की बात है। तीन बातें हो गई ना, चौदह राज उतंग नंबर वाला लोक, किन्हू करे न धरे न वाला लोक, और जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। तो ये तीनों प्रकार के चिंतमन में मैं कहां खड़ा हूं। जैसे टोडा मल स्मारक भवन है ना, तो अपन कहते सारे हिंदुस्तान में के विश्व के नक्शे में हमारी क्या जगह है, तो हम विश्व बनाएं तो उसमें एक हिंदुस्तान बनाएं छोटा सा, फिर हिंदुस्तान में राजस्थान का हिस्सा दिखाएं, राजस्थान में जयपुर वाला हिस्सा दिखाएं, और फिर टोडे मल स्मारक के बिंदु को बता दें और बाकी चीजें बिना बनी छोड़ दें। तो ये सारे भौगोलिक लोक में मैं कहां खड़ा हूं ये निर्णय करना है, ये दार्शनिक लोक में मैं खड़ा हूं कहां हूं ये निर्णय करना है, और आध्यात्मिक लोक में मैं कहां खड़ा हूं ये करना है। तो अपने दिमाग में से ये बात निकालना, कौन सी बात निकालना, ये बात निकालना कि मेरे ज्ञान में यदि दुनिया झलक जाएगी, कोई जानने में आ जाएगा, तो जैसे महा अनर्थ हो जाएगा। ये जो महा अनर्थ होने की जो कल्पना है वो निकालने की ये बात कहते हैं कि तेरा तो स्वभाव है सारा लोका लोग उसमें झलके, कि साहब मैं जब पर को जानूंगा तो अपने को नहीं जान पाऊंगा, कि ऐसा स्वभाव नहीं है तेरा, कि जब पर को जाने जब अपने को नहीं जान पाएगा, जब अपने को जानेगा जब पर को नहीं जान पाएगा, ऐसा तेरा स्वभाव नहीं है। ख्याल में है ना, सारे लोका लोग में तेरा आत्मा भी उसी वक्त जानने में तेरे में आता है, इसलिए वो चिंता करने की तेरे को कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा आध्यात्मिक चिंतमन जब वहां बात आई थी, कौन सी, सो लोक किन्हू न करे न धरे को, उसमें ये बात आई थी कि बिन समता सो लोक माही, बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता, घूमता हुआ संसार में दुख पा रहा है। और यहां आई थी चौदह राजु तंग नम में भी कि इसमें तीन लोक में भटकता हुआ दुख पा रहा है, और इसमें ये बात आई है कि तू तो सुख का धाम है, सारा लोका लोक तेरे में झलके तो भी तू सुखी, ना झलके तो भी ना सुखी। लेकिन ना झलके ये बात लाया कहां से, क्योंकि लोका लोक का स्वभाव झलकना है और आत्मा का स्वभाव उसमें झलके ऐसा है, इसे चाहे झलके चाहे ना झलके ये चाहे वाली बात ये बीच में आती ही नहीं, सारा लोक आत्मा में झलके और आत्मा को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, अनंत आनंद में जरा भी खलल ना पड़े, ऐसा मेरा स्वभाव है, ये लोक भावना का चिंतमन है। इस तरह इन दस भावनाओं की चर्चा हुई, अब आगे अपन ग्यारहवीं और बारहवीं जो भावना है बोध ही दुर्लभ और धर्म भावना, उसकी चर्चा करेंगे कल। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।